arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास, वाचक स्वर योगेश पांडे का है।
इसके पश्चात अब हम पढ़ेंगे शिवाजी का शासन प्रबंध। श्री महादेव गोविंद रानाडे के शब्दों में, शिवाजी केवल वीर, साहसी और सफल सैनिक विजेता ही नहीं, अभी तो वे कुशल ज्ञानी प्रशासक भी थे। वे केवल एक उच्च कोटि के सेनापति, राजनीतिज्ञ व कूटनीतिज्ञ ही नहीं, अभी तो एक सफल शासक भी थे। युद्ध के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां तो महान है ही, पर शांतिकाल की कलाओं में उनकी विजय उससे भी बड़ी है। शिवाजी के शासन प्रबंध के मुख्य तत्व। शिवाजी ने अपने राज्य के लिए जो प्रशासन गठित किया, उसका एक निर्दिष्ट स्वरूप था। शिवाजी के शासन प्रबंध के मुख्य तत्व इस प्रकार थे। पहला, हिंदू तत्व। शिवाजी का शासन धर्मशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में वर्णित राज्य पद्धति पर आधारित था। उसमें हिंदू तत्वों की प्रधानता थी। दूसरा, उदात्त धार्मिक भावना। शिवाजी की राज्य पद्धति में उदात्त श्रेष्ठ धार्मिक भावनाएं थीं। शिवाजी की शासन व्यवस्था में परंपरागत सामाजिक, पारिवारिक आचार पद्धति के साथ साथ सार्वजनिक मूल्यों का भी मान रखा गया। तीसरा, ईश्वर प्रदत्त राज्य। प्रशासन के लिए शिवाजी की प्रेरणा ईश्वरीय और आध्यात्मिक थी। उनकी राज्य साधना भी आध्यात्मिक धर्म साधना की भांति थी। चौथा, धर्म निरपेक्षता। शिवाजी की राज्य पद्धति में सब धर्मों का समावेश था। सभी धर्मावलंबियों को अपनी अपनी उपासना पद्धति अपनाने की पूरी स्वतंत्रता थी। पांचवा, एकतंत्रीय प्रभुत्व। शिवाजी के राज्य का स्वरूप एकतंत्रात्मक था। इसमें राजा को ही सर्वोच्च अधिकार थे। शिवाजी के शासन के भाग। शिवाजी के प्रशासन में शासन के दो मुख्य भाग थे, केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासन। हम पढ़ेंगे पहले केंद्रीय शासन के विषय में। राजा समस्त प्रशासन की धुरी था। राज्य की संपूर्ण शक्तियां एवं अधिकार उसके हाथों में केंद्रित थे। उन पर किसी का प्रतिबंध या नियंत्रण नहीं रहता था। वे राज्य के सर्वोच्च न्यायाधीश होते थे। अष्ट प्रधान परिषद। प्रशासन के लिए शिवाजी ने 8 मंत्रियों की परिषद गठित की, जिसे अष्ट प्रधान कहा जाता है। इनके नाम और कर्तव्य इस प्रकार थे। पेशवा। अष्ट प्रधान के प्रमुख को पेशवा कहा जाता था। इसका कार्य राज्य के हितों को देखना और समस्त शासन व्यवस्था का ध्यान रखना था। यह राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था। पंत अमात्य। यह आधुनिक वित्त मंत्री के समान था। यह आय व्यय का निरीक्षण कर अपनी सूचना तैयार करके उस पर हस्ताक्षर कर राजा तथा अन्य मंत्रियों के सम्मुख प्रस्तुत करता था। सचिव। इसे पंत सचिव भी कहते थे। इसका कार्य परगनों के लेख पत्रों की व उनकी आय व्यय की देखभाल करना एवं राजपत्रों एवं पत्र व्यवहारों को देखना था। वाक्यानवीस। यह राज्य के दैनिक कार्यों का पूरा विवरण रखता था। यह राजा के गृह प्रबंध की देखभाल भी करता था। सरे नौबत। यह सैन्य विभाग का प्रधान था। यह सैनिकों की भर्ती, सेना का संगठन, प्रशिक्षण, अनुशासन, रसद, युद्ध योजना आदि सेना संबंधी कार्यों को देखता था। यह सैन्य संचालन राजा के निर्देशानुसार करता था। सुमंत। यह विदेश विभाग का प्रमुख था। यह विदेशों के साथ संबंधों को ध्यान में रखते हुए विदेशी मामलों में शत्रु से युद्ध करने अथवा संधि का परामर्श देने का कार्य करता था। पंडित राव। यह राज्य का मुख्य राज पुरोहित था। यह धर्म विभाग और दान विभाग का अध्यक्ष था। इन विभागों के कार्यों का उत्तरदायित्व इन पर ही था। न्यायाधीश। यह दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों को सुनता और हिंदू धर्म शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार न्याय देता था। प्रांतीय प्रशासन। शिवाजी के अधीन जो राज्य था उसके प्रशासन के दृष्टि से चार भाग थे। केंद्रीय भाग स्वयं शिवाजी के अधीन था, उत्तरी भाग या प्रांत मोरो यंबक के अधीन था, दक्षिणी भाग अन्नाजी दत्त के अधीन था, दक्षिण में जिंजी और अन्य आसपास के प्रदेश अमात्य हनुमंते के अधीन थे। प्रशासकीय इकाइयां। अष्ट प्रधानमंत्रियों के प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से विभाजन किया गया था। प्रांत के सर्वोच्च अधिकारी को सूबेदार या मुख्य पेशाधिकारी कहा गया। सूबेदार प्रांत का सर्वोच्च शासक था, जिसे शिवाजी स्वयं नियुक्त करते थे और वह उनके प्रति उत्तरदायी होता था। नगद वेतन। शिवाजी अपने सैनिक अधिकारियों को राजकोष से प्रतिमाह निर्धारित वेतन देते थे। उनको वेतन के लिए भूमि या जागीर नहीं दी जाती थी। मंत्री, सेनापति, सूबेदार से लेकर साधारण कर्मचारी को राजकोष से नगद वेतन प्राप्त होता था। न्याय प्रशासन। जिले में न्याय का उत्तरदायित्व सूबेदार पर था। वह दीवानी और फौजदारी के मामलों में निर्णय देता था। दीवानी मामलों को अलग से प्रचलन नहीं था। शिवाजी की दंड विधि हिंदू शास्त्रों पर आधारित थी। सर्वसाधारण को शीघ्र और व्ययहीन ढंग से न्याय प्रदान करने के लिए पंचायतों की व्यवस्था की गई थी। शिक्षा एवं अनुदान। शिवाजी के शासनकाल में शिक्षा के लिए कोई संगठित और व्यवस्थित राजकीय विभाग नहीं था। ब्राह्मणों के निवास निजी शाला केंद्र थे। यहाँ विद्यार्थी ज्ञानार्जन के लिए जाते थे। राज्य की ओर से संतों, विद्वानों, पंडितों एवं शिक्षाविदों को अनुदान दिया जाता था। कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। युद्धों और आक्रमणों के साथ साथ शिवाजी ने अपने राज्य में व्यापार और उद्योग की ओर ध्यान दिया। उन्होंने यथाशक्ति वाणिज्य और व्यापार को प्रोत्साहित किया। निर्जन बस्तियों को पुनः बसाया गया। अब हम पढ़ेंगे राजस्व व्यवस्था। शिवाजी ने राज्य के आय स्रोतों को प्रभावकारी बनाने के लिए भूमि प्रबंध पर विशेष ध्यान दिया। राज्य की अर्थव्यवस्था के सुधार हेतु उन्होंने कई कार्य किए जो इस प्रकार हैं। एक, जागीरदारी प्रथा समाप्त कर दी गई, क्योंकि शक्तिशाली हो जाने के पश्चात जागीरदार विद्रोह कर देते थे। दो, लगान वसूली के लिए ईमानदार अधिकारियों को रखा गया। तीन, जमीन का नाप कर उन्हें श्रेणीकृत किया गया तथा श्रेणियों के आधार पर लगान निश्चित किया गया। चार, अकाल के समय किसानों को ऋण की सुविधा प्रदान की गई, जिसे वे आसान किश्तों में वापस कर सकते थे। पांच, शिवाजी के अधिकार में जो अन्य प्रदेश थे वहां से चौथ एवं सरदेश मुखी वसूल की जाती थी। छह, चौथ, यह भूमि कर का चौथा भाग होता था। शिवाजी के प्रभाव वाले प्रदेशों से यह चौथ वसूल की जाती थी। चौथ की वसूली किसी प्रदेश की जनता को केवल मराठा सैनिकों की लूट से बचाती थी। शिवाजी की सेना की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि वह उस प्रदेश को बाह्य आक्रमण से बचाए। सात, सरदेशमुखी, देशमुख महाराष्ट्र के जिलों में लगान वसूली का कार्य करते थे। राजा देशमुखों का प्रमुख होता था। शिवाजी प्रदेश के किसानों से उपज का दसवां भाग सरदेशमुखी के रूप में लेते थे। भारत के इतिहास में शिवाजी एक ऐसे ओजस्वी तारे हैं जो इतिहास के अंतरिक्ष में सदैव चमकते रहेंगे और उनके आदर्श भारत को प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। शिवाजी के राजनीतिक आदर्श। एक, हिंदू राष्ट्र की स्थापना। हिंदू राष्ट्र अथवा हिंदू स्वराज्य की स्थापना शिवाजी का प्रथम राजनीतिक आदर्श था। शिवाजी कट्टर हिंदू थे तथा मुस्लिम शासकों की हिंदू विरोधी नीति ने उन्हें हिंदुओं को संगठित करने की प्रेरणा दी। शिवाजी धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। दो, महाराष्ट्र को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना। शिवाजी पूरे महाराष्ट्र को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहते थे। इस कार्य हेतु उन्होंने महाराष्ट्र की जातियों एवं मराठा सरदारों में परस्पर संघर्ष समाप्त करवाकर उन्हें एक सूत्र में बांधा। उन्होंने महाराष्ट्र के समस्त निवासियों में स्वराज्य की भावना जागृत की एवं उन्हें औरंगजेब के विरुद्ध तन मन धन से त्याग के लिए प्रेरित किया। 3. हिंदू धर्म की रक्षा। हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा शिवाजी का महान कार्य था। औरंगजेब ने हिंदू धर्म एवं संस्कृति को नष्ट करने के लिए मंदिरों मूर्तियों को तोड़ा एवं हिंदुओं पर अनेक अत्याचार किए। शिवाजी ने हिंदुओं के कई तीर्थ स्थानों को मुक्त मंदिरों का निर्माण कराया एवं उनकी रक्षा की। वह साधु संन्यासियों को दान करते थे। उन्होंने उन व्यक्तियों को हिंदू धर्म में वापस लाया जिन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के पठन पाठन एवं हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कई प्रयत्न किए। 4. शक्तिशाली केंद्रीयकृत राज्य की स्थापना। शिवाजी ने शक्तिशाली सुगठित केंद्रीयकृत राज्य की स्थापना की जिसमें संपूर्ण शक्तियां सम्राट के पास थी। विशाल मुगल साम्राज्य का मुकाबला करने के लिए इस प्रकार के शासन की अत्यधिक आवश्यकता थी। प्रांतीय सूबेदारों की नियुक्ति भी स्वयं शिवाजी करते थे। सभी प्रांतीय सूबेदार केंद्रीय सरकार के प्रति उत्तरदायी थे। 5. स्थायी सेना। शिवाजी ने राज्य के लिए एक अनुशासित सुगठित एवं स्थायी सेना की व्यवस्था की। मनसबदारी प्रथा को समाप्त कर राज्य की स्वयं की एक सेना तैयार की जिसे राज्य की ओर से नगद वेतन हथियार एवं घोड़े मिला करते थे। इसी स्थायी सेना के बल पर शिवाजी ने महान सफलताएं प्राप्त की। 6. धर्मनिरपेक्षता। यद्यपि शिवाजी कट्टर हिंदू थे किंतु उन्होंने सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। उन्होंने हिंदुओं को आर्थिक सहयोग के साथ ही साथ मुसलमानों को भी मस्जिदों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी। उन्होंने न कभी किसी मस्जिद को तोड़ा और न ही किसी को बलपूर्वक हिंदू बनाया। उनके राज्य में उच्च पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती थी न कि जाति या धर्म के आधार पर। अपने अभियानों के दौरान मिलने वाली कुरान शरीफ की प्रतियों को वे ससम्मान मुसलमानों को दे देते थे। मुस्लिम स्त्रियों को वे अपनी माँ बहन के समान मानते थे। 7. लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। शिवाजी ने एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। उन्होंने अपने राज्य का शासन प्रबंध एवं व्यवस्था इस प्रकार से की जिससे जनता का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। उन्होंने कृषकों के कल्याण के लिए जागीरदारी एवं जमींदारी प्रथा को समाप्त किया तथा उनके लिए अच्छे बीज एवं पशुओं की व्यवस्था की। कृषकों हेतु ऋण की सुविधा भी उपलब्ध थी जिसकी वापसी आसान किस्तों में की जा सकती थी। उन्होंने जनता पर अत्याचार रोकने के लिए सामंतवादी व्यवस्था का उन्मूलन किया। उन्होंने प्रत्येक नागरिक के लिए रोजगार की व्यवस्था की। शिवाजी ने लोगों के नैतिक विकास के लिए भी कार्य किया। 8. भाषाई एकता। संपूर्ण महाराष्ट्र में भाषाई एकता की स्थापना शिवाजी का प्रमुख राजनीतिक आदर्श था। उन्होंने फारसी के स्थान पर मराठी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया। उन्होंने सुल्तान अथवा बादशाह के स्थान पर छत्रपति की उपाधि धारण की। उन्होंने राज्य व्यवहार कोष नामक एक संस्कृत कोष तैयार करवाया जिसमें शासन व्यवस्था हेतु नए शब्दों का संग्रह है। उन्होंने मराठी भाषा को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया किंतु अन्य भाषाओं के प्रति भी उनकी नीति उदार थी।
arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।